क्या हुआ? दरवाजा जड़ से उखाड़ देगा क्या? कौन है?
पूना कहाँ है?
वही हमारी पूना।
ये तुम्हारी पूना कौन है? मैं तो अपनी बहन पूना को ढूंढ रहा हूँ। देखो छुपाने का कोई मतलब नहीं है, उसकी बदबू हर तरफ फैली हुई है।
बदबू के लिए क्या दूसरों के घर का दरवाजा तोड़ दोगे? क्या मालूम कहाँ है? उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा, वो चली गई।
दिल का दौरा डाला गया है।
अब जो भी हो, ये हंगामा कैसा?
ये हंगामा कैसा है बेटी?
मैं भी आपकी तरह हूँ हाशिम खान, मगर उसका फर्ज मालूम है। तुमको अपनी बहन की तलाश है, तुम सोचते हो इस मकान में है, इस घर के बाहर खड़े रहो। जब घर से बाहर निकले तो गरीबान पकड़ लेना, जो दरवाजा चाबी से ना खोला गया पुलिस आकर पता लगाएगी। यहां तक पुलिस को पहुंचने में 3 मिनट लगते हैं। तुम जाओगे या पुलिस को फोन करूं?
अगर तुम कहती हो नहीं है तो आखिर आएगी ना? अगर है और कहती हो कि नहीं है तो आखिरकार बाहर निकलेगी ना? मां कसम सुबह तक इस दरवाजे के पीछे बैठ रहूंगा, समझी तुम?
चलिए।
मैं शर्मिंदा हूं, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं।
क्या सोचा था क्या हो गया? आ जाओ।
बेइज्जत करने वाली लड़की।
कौन? वही पूना?
कह रही थी घर वालों से कुछ झगड़ा हुआ है, मगर ऐसा लगता है उसने कुछ ज्यादा गड़बड़ की है।
क्या घर से भागी है?
नहीं भाई, दोपहर के वक्त उसकी बहन उसके पास आई थी। कह रही थी उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा है और उसका भाई गुस्से वाला है। मैं उसको ज्यादा नहीं जानती।
ज्यादा नहीं जानती और उसके साथ एक छत के नीचे रहती हो?
मेरी माली हैसियत इतनी नहीं है कि अलग मकान ले सकूं। वो रहा है टेलीफोन, अगर अपने डैड को चाहो तो फोन कर लो ना। तो अपने पर्स की चोरी और ना ही अपने शौहर के बारे में कुछ कहो। अगर पूछेंगे कि मोबाइल क्यों बंद है तो कह देना नाले वगैरह में गिर गया, या कुछ भी बता देना।
आज मैं क्या काम करना चाहती थी? ओ हाँ,
फोन किया?
हाँ। तुम क्या करती हो? तुम्हारा क्या काम है?
पूछो कि क्या था। एक कंपनी में सेक्रेटरी थी, वहां से निकाल दिया गया।
क्यों?
उनको कुछ ज्यादा ही मिलनसार सेक्रेटरी की जरूरत थी। अच्छा चलो खाना खाके सोते हैं। सोएंगे तो नहीं, बस बातें करेंगे।
कल जाऊंगी शाइस्ता की तरफ, देखती हूँ कि क्या हुआ।
तेहरान में कोई रिश्तेदार नहीं कि वहां अहमद रजा के बारे में कुछ पता चल सके?
कोई रिश्तेदार तो नहीं है, इतना पता है कि उसका चचाजात कुछ अरसे तेहरान रह चुका है, लेकिन कहाँ है नहीं मालूम।
अच्छा बताओ तो, तुम्हारा बच्चा लड़का है या लड़की?
आखिरी मर्तबा जब अहमद रजा घर आया था तो बच्चे का नाम हम लोग नगीन रखने वाले थे।
नगीन? वाह।
मैं कहा करती थी, अहमद रजा, इस काम से हमारी जिंदगी तो चल ही रही है, फिर तेहरान का काम छोड़ो, हमें गुजारे के लिए इतनी भागदौड़ की क्या जरूरत है? ये जल्दी जल्दी और ज्यादा की तलब छोड़ो। जब इसी शाइस्ता से पहचान हुई तो ये आवाज आया था जमीन खरीदने के लिए। कहते थे बड़ा आदमी है और ये कि खुशनसीबी इसी में है, और 10 लाख उसके लिए मामूली रकम थी।
10 लाख तो बहुत हैं। जो कहता है 10 लाख कम है, जरूर उसके काम में कुछ गड़बड़ होगी।
ऐसे नहीं कि उसमें कोई खामी नहीं थी, लेकिन ये नहीं कि लोगों का माल हड़प कर जाए। खुदा बख्शे, इस तस्वीर में उसकी मुस्कुराहट कितनी भली लग रही है।
हमेशा कहा करती थी, जब मैं मर जाऊं तो अजान के वक्त मुझे याद किया करना। दिन रात मेरी तवज्जो अजान पर मां की याद में होती है, मगर सुबह की अजान के वक्त हमेशा सोती रहती हूं।
इस कदर अपने पैरों पर खड़ी न रहो मैडम फातिमा।
मेरी माँ ने तो अपने 2 बच्चों को खेतों में काम करते करते पैदा किया, और यह तो महज पतीली में हलवा चलाना है।
इससे तो अच्छा था कि बाहर से हलवा
मिठाई की दुकान पर नजर का पाया जाने वाला हलवा सुस्त और लापरवाह लोगों के लिए है मुर्दों की नस्बत। तुम्हारे माँ के सिलसिले में तुम्हारे डैड के जज्बात सुस्त नहीं है, तुम्हारे जज्बात सुस्त नहीं है, मेरे जज्बात भी सुस्त नहीं है।
फिर तुमने रोया के जज्बात के बारे में कुछ नहीं कहा?
अपने शोहर की बहन के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या?
वाह वाह, क्या हलवा है। मेरी सारी कोशिश यह है कि इस घर की खामोशी और तन्हाई और रोया की तन्हाई, मेरे डैड की तन्हाई और माँ की खाली जगह, इस घर के दरो दीवार डैड और रोया को निकले जा रहे हैं।
अलबत्ता इसका रास्ता है, और वो ये कि उन्हें अकेला ना छोड़ा जाए, कुछ वक्त के लिए सही अपना घर बंद करके यहाँ उनके पास आ जाए।
डैड के गुस्से का क्या करें?
तुम्हारे डैड के चेहरे पर गुस्सा जचता है।
ये कि तुम्हारे सलाम का भी ठीक से जवाब नहीं देते, इसका क्या करें?
इसका भी रास्ता है।
रास्ता क्या है?
बस इसका रास्ता यही है कि इतना सलाम करो कि जवाब देने पर मजबूर हो जाए।
हाँ, यही रास्ता है।
तुम रास्ता जानते थे, सिर्फ मेरी राय के बारे में परेशान थे।
तश्वीश तो थी, मगर तुम्हारी दरगुजर करने की आदत को अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ डैड की शक्ति को भी इससे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। डरता हूं कि एक दिन उनकी ये शक्ति।
मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, अब इस बहस को यहीं पर खत्म कर दें, ठीक है?
ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब जबकि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, मैं भी जा रहा हूं घर से तुम्हारे लिए इनाम में पैसों वाला बॉक्स लाता हूं।
तुम्हारे ख्याल में उसमें कितना पैसा जमा हो गया होगा?
हेलो,
हेलो बाबक, जरे जमानत का बंदोबस्त हो गया।
कैसे हुआ बाद में तुमको बताऊंगा। देखो
जाओ अपने डैड के पास। मैं नहीं जाऊंगा ना, मैं नहीं चाहता कि इतने दिनों की रंजिश के बाद जब मुझे मिले तो ये महसूस करे कि मेरा कर्जदार है। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज।
फिर तुमने देर कर दी मोहतरमा।
माफ करना, आपकी माँ 10 बजे तक तो सोती रहती हैं।
तुम्हें उनकी नींद से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सब कुछ टाइम से होना चाहिए। उनका सोना, उठना, दवाई, नाश्ता, सब कुछ टाइम पर।
जो हुक्म।
हेलो, सलाम बाबक।
जगह मौजूद रहते हो।
अहमद रजा बाबाई की बीवी सामने आई है, लेकिन वो कहती है कि शौहर के बारे में कुछ नहीं जानती। कहती है कि उसका शौहर लोगों का माल हड़पने वालों में से नहीं है।
ये अच्छा दावा है, मगर उसका शौहर है कहां जो सीना तान कर मेरे, आपके और कर्जदारों के सामने कहे कि मैं पैसे खाने वालों में से नहीं हूं।
हाँ, आप सच कह रहे हैं।
मुझे मेरा हक देने के लिए आए हो।
जब से मैंने सुना कि जमानत पर आजाद हो रहे हैं, सोचा कि जो कुछ मेरे दिल में है बता दूं, कहीं खुदा ना खास्ता बात मेरे दिल में ना रह जाए।
तो फिर क्या तय पा चुका है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे?
क्यों नहीं, लेकिन मैं ये बातें अभी करना चाहता था। मेरे लिए यह यकीन करना बड़ा दुश्वार है कि एक इंसान इस कदर हैसियत, तजुर्बे और उम्र भर की कमाई जमा करने के बाद एक नौजवान के झांसे में आकर सबको परेशानी में डाल दे।
देखो इंस्पेक्टर, एक बोलता है फे, दूसरा बोलता है फरहजाद। ये फे और फरहजाद बोलना तुम्हारा काम नहीं है, नौजवानों का नहीं है। इसीलिए ये मुश्किल है कि तुम उस पर यकीन करो। ये कल और आज की कैद और अब की आजादी एक हद तक मेरे लिए बेमानी है, जो हर दम हर घड़ी मेरी राह देखा करती थी। एक हफ्ता हो रहा है मनु मिट्टी के तले दब चुकी है, मगर अब जब बात कहनी है तो मुझे बोलने दो। जैसा तुम कह रहे हो, पैसा जमा करने के अलावा मैं अपनी जिंदगी में एक काम और किया करता था। वो ये कि सुबह से लेकर रात के आखिरी लम्हे तक इज्जत और हैसियत भी हासिल करने में लगा रहता था, खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी असलियत और नसब के लिए। अब जो कुछ भी हो, इन सब को सिर्फ पैसे के लिए दांव पर लगाना मेरे ख्याल से बेढंगापन है। इसकी कोई वक्त नहीं है। क्या अब मैं जा सकता हूं?
अहमद रजा की बीवी मिल गई है।
क्या पूछेंगे नहीं, जमानत किसने दिलाई?
सलाम।
सलाम डैड।
तुम ठीक हो बेटी?
आपकी तरफ से फिक्रमंद थी।
बिला वजह फिक्रमंद हो, एक ज़ियाफ़त की तरह था, कल गया आज चला आया।
उन्हें आपसे क्या चाहिए?
जिंदगी की मुश्किलात को मुझ पर छोड़ दो। तुम कहो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। मैं तुम्हारी हंसी को घर में गूंजता हुआ देखना चाहता हूं।
मेरा सारा ध्यान और तवज्जो मां की सोगवारी की रस्म पर थी। आज सातवीं खत्म हो गई है, अब रह जाएगा चालीसवां। उसके बाद हम अपना दिल किस चीज से बहलाएंगे?
कल रात से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आज जब रिहाई मिली तो ध्यान तुम में ही था। क्या करना है मालूम है? चाहो या ना चाहो, यह हफ्ता और चालीसवां गुजर जाएगा। जिंदगी की खासियत यही है। तुम असली रोया की जिंदगी में लौट जाओ, अपनी पढ़ाई, अपना मुस्तकबिल, अपनी रंगीनी की तरफ। अपने काले कपड़े उतारने की सोचो।
आप जो बोल रहे हैं कि रंगीनी या काले कपड़े मेरे बदन से उतारने को, क्या आप भी ये काम करेंगे?
मियां बीवी की कहानी ही कुछ और है, मेरी और नाहिद की कहानी ही कुछ और है। तुमको फिर से अपनी जिंदगी की तरफ लौटना होगा रोया। नाहिद का भी यही चाहना है, समझ रही हो?
आपके लिए ही सही, कोशिश करूंगी कि समझूं।
रसम के बारे में क्या रिपोर्ट है?
सब कुछ तैयार है, मस्जिद, कारी, गुलाब, हलवा, रात का खाना वगैरह सब तैयार है। और हाँ, हाल का बंदोबस्त भी हो गया है। बस खुदा का शुक्र है कि आपकी कमी थी जो पूरी हो गई।
अलबत्ता माँ जैसा हलवा जिनकी रूह को खुदा बख्श दे तैयार नहीं हो सकता।
माँ? कौन सी माँ?
बाबक की माँ, आपकी बीवी।
फिर तुम क्यों कह रही हो मां? जहां तक मुझे पता है, जब बाबक के सर पर तुम सवार हुई तो तुम्हारी खुद की मां थी।
अभी भी हैं। बाप का साया नहीं था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब है। खुदा आपको जिंदा रखे। हेलो।
हेलो, कावे बोल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो शाइस्ता से मुलाकात कर सकती हैं। जिस मस्जिद का पता बता रहा हूँ नोट कर लें। थोड़ी देर में मजलिस खत्म हो जाएगी। ये खुजिस्ता है, अहमद रजा की बीवी।
सलाम, ताज़ियत पेश करती हूँ।
सभी यही बोलते हैं।
अहमद रजा ने आपके बारे में मुझसे बात की थी, अपने काम के बारे में और उस फ्लैट के बारे में जो एक हफ्ता पहले किराए पर लिया था, जिसमें वो मुझे लाने वाला था, खुद के बचत और मुस्तकबिल के बारे में। मगर जो कुछ उसके खिलाफ आज कहा जा रहा है वो पिछली बातों से मेल नहीं खाता कि ले डूबा, खा गया, ले भागा। मैं आज उसके बारे में एक हल्का सा सुराग ढूंढ रही हूँ, सिर्फ एक छोटा सा सुराग। और
सुराग? आहिस्ता बोलता हूँ, नोट कर लेना। डॉक्टरों ने कहा अब कुछ होने वाला नहीं है, कैंसर ने तुम्हारी बीवी को खोखला कर दिया है। मैंने खुद से कहा हो सकता है थोड़ी उम्मीद की किरण हो, मुझे सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में लग गया तो जिंदगी भर कफे अफसोस मलता रहूंगा। अहमद रजा को बुलाया, कहा ये जमीन, ये मेटीरियल, ये पैसा, ये कस्टमर, ये मेरा भरोसा जो तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी की सूरत में दे रहा हूं। मैंने कहा अपनी बीवी का इलाज करवाने समंदर पार जा रहा हूं, शायद निजात की कोई उम्मीद हो और मेरी बीवी की जान बच जाए। गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वापस आ गया ईरान। मैंने सोचा जब तक नाहिद की सांसें रुक रुक कर चल रही हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। जैसे ही एयरपोर्ट पर मेरे कदम पड़े, क्या देखता हूं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी दौलत, लोगों का पैसा, अहमद रजा के साथ सब गायब है। मेरी सारी दौलत, लोगों का पैसा और जो भरोसा मैंने कमाया था, और बीवी के जनाजे को मनोमिट्टी तले दफन किया सो अलग। मैं तुम्हें अदालत तक घसीटूंगा, जैसे लोगों ने मुझे हवालात में बंद करवाया तुम्हारा भी हश्र यही करूंगा। तुम यहां आई हो कि तुम आगे रहो ताकि पीछे ना रह जाओ, क्योंकि कल को जब कानून का हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंचे और सवाल करे कि बताओ तुम्हारा शौहर कहां है, तुम बेगुनाही का चेहरा लेकर सामने आओ और कहो कि मैं उससे बेखबर हूं और उसकी तलाश में इधर उधर भटक रही हूं। सुनो मोहतरमा, मैं सांप निकलकर अजगर बन गया हूं। एक मर्तबा इस उम्र में गलती कर बैठा हूं और सब कुछ गवा बैठा हूं। अब मैं जीरो से शुरू करने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं इसकी सलाहियत नहीं रखता। इस कदर तुम्हारे शौहर का पीछा करूंगा कि उसे ढूंढ निकालूंगा।
ये कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है फित्री है। ये जो आप मुझे धमका रहे हैं और मैं डर रही हूँ फित्री है। मैं बेकसूर हूँ, बेसहारा हूँ, मदद के लिए पुलिस के पास जाऊँ ये भी फित्री है। और जनाब शाइस्ता, इस सब के बीच आप जिस सांप और अजगर की बात कर रहे हैं और आपके रौब और दबदबे के बावजूद, एक छोटे से शहर से आने वाला अहमद रजा, जिसकी हैसियत एक पैकेट सिगरेट चुराने तक की नहीं है, वो आपके सर से टोपी चुरा ले जाए, क्या ये गैर फित्री मालूम नहीं होता?
मोहतरमा आप अच्छा बोल लेती हैं, लेकिन एक बुराई है, वो ये कि आप ये नहीं समझ पा रही कि कहाँ खड़ी होकर बात कर रही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, वो जगह अदालत है जहाँ आपकी बात सुनी जा सकती है। खुशी हुई आपसे मिलकर, आइए डेट चलते हैं, अभी मस्जिद का हाल खाली नहीं हुआ है। एक और मेहमान वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा है, जिसने हमारे जितना माँ के लिए आंसू बहाए हैं। आइए डैड चलते हैं।
तो अभी तक तंदुरुस्त हो?
हाँ, अभी तक मोटा हूं।
जब बाबक ने कहा जरा जमानत, तो मैं समझ गया कि बच्चा है जो पूछ रहा है। मुझे मालूम था कि यह तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है जो मेरे लिए और नाहिद की मजलिस के लिए इतनी भागदौड़ करे और अपना गरेबान चाक करे। तुमको बहुत वक्त लगा होगा मुझ तक पहुंचने में, है ना? हुकूमत और टैक्स के खातिर 2 साल तक मुझसे नाराजगी तुमको पसंद थी?
क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं गलत काम करूं, मेरे बेचारे मुवक्किल। इन 2 वर्षों के बारे में बताओ।
देर से आए और जल्दी जाना चाहते हो? कहने को मेरे पास बहुत कुछ है।
अभी तो ही काफी है। अभी के लिए बस दो ही बताओ, कहो, बयान करो।
बाबा ने शादी कर ली ऐसी लड़की से जो मुझे पसंद नहीं थी, मगर नाहिद को पसंद थी, और नाहिद को इसलिए पसंद थी क्योंकि वो बाबक को पसंद थी। नाहिद इनकी हिमायत करती थी, जब मैं नहीं था तो मेरे घर इनका आना जाना था, तब नाहिद जिंदा थी। नाहिद इस लड़की को पसंद करती थी, मैं कहता था ये लड़का इस लायक नहीं हुआ कि आशिकी के झमेले में पड़े, लेकिन इसने मोहब्बत की और मुझसे बगावत की और मेरे खिलाफ उठ खड़ा हुआ।
और तुमको उसकी इस बगावत करने से दिली खुशी महसूस हुई, जो के गुजर गया।
इस वाक्य से मुझे अपनी जवानी याद आती है।
और तुम्हारी जवानी को मैं जानता हूं, तुम्हारे और बाबा के अखलाक में कोई मुशाबहत नहीं थी, तुम्हारी नाक हमेशा आगे रहती थी, जो शर्म आया बाबक में है वो तुम में नहीं थी, नहीं थी। नाहिद की बात करो, दोनों एक सेब के दो टुकड़े जैसे हैं।
और दूसरा टुकड़ा नाहिद थी, तूफान थी, इज्जत थी। ना पूछो कि नाहिद की मौत ने मेरे दिल के कितने टुकड़े कर दिए।
अच्छा रोया जान, मुझसे मिलने आया करो, इंशाअल्लाह कि ये तुम्हारा आखिरी गम हो।
जरूर आंटी फ्लोर।
तुम सबको खुदा हाफिज।
सलाम जनाब।
बैंक से क्या पता चला?
अहमद रजा बाबा का बैंक अकाउंट चेक किया गया, रिपोर्ट के मुताबिक एक ही चेक के जरिए 8 अरब निकाला गया है।
फिर कहाँ खर्च हुआ?
अहमद रजा बाबा के अकाउंट से अब्बास फरानी को ट्रांसफर हुआ और अब्बास फरानी के अकाउंट से 2 चेक के जरिए पैसा निकाला गया, जो इस्तेमाल है कि मार्केट में लाया गया।
ड्यूटी वाजे है, ये जो नाम बता रहे हैं उसको ढूंढो, अब्बास फरहानी को। जो भी मालूमात फराहम करो हर 24 घंटे की रिपोर्ट लिखो और तफ्तीश के लिए भेज दो।
खोजस्ता, आओ बैठो।
मैं अहमद रजा के घर जा रही हूँ।
फिर से शुरू हो गई तुम?
उसने कहा था जब तक तुम नहीं आओगी सामान नहीं सजाऊंगा, जा रही हूँ घर सजाने।
आखिर तुम्हारे पास चाबी कहाँ है?
कुछ तो करूंगी।
अरे तुम वहां जाओगी लोग तुम पर फिर टूट पड़ेंगे। आओ चलो चलें। एक मिनट जनाब।
अरे क्या मुसीबत है?
मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ आओ और खुद को परेशानी में डालो।
तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, माफ करना जनाब।
अरे तुमने मेरा मजाक बना के रख दिया।
चलें आओ, चलो चलें।
मैं पुलिस स्टेशन होके आ रही हूँ, मुझे घर की चाबी चाहिए।
मैंने कहा शायद चाबी होगी, बेहतर होगा कि होगी।
मेरे ख्याल में उसने तुम्हारे आने तक घर सजाने का इंतजार नहीं किया। हाँ, उसकी पसंद बुरी नहीं है। घर के लिए क्रिस्टल भी ले रखा है। मैंने चूल्हे पे केतली चढ़ा दी है।
हेलो अहमद रजा। हेलो, कहाँ हो तुम? आते हो और आधी अधूरी बातें करके चले जाते हो और मुझे फिक्रमंद कर देते हो। उठो, घर आ जाओ, बातें करेंगे और रात का खाना साथ खाएंगे। मुंतजर हूँ, खुद को जल्दी पहुँचाओ।
چه دل تنها نشستم، نشستم به هوای تو، من با تو آرامم پس از این، به خدا گریه نکن دل بیتاب از بیخبری،